श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 23। यत्र काले त्वनावृतिम आवृतिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्षामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो शरीर त्यागना और ऐसे त्यागना कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े, ये एक विज्ञान है, ये मात्र कपोल कल्पना नहीं है। इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि किस विशिष्ट समय में अगर शरीर त्यागेंगे तो विशिष्ट गति प्राप्त होगी और अन्यथा व्यक्ति को दोबारा इस जगत में आना पड़ेगा। तात्पर्य, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर त्यागेंगे, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है और सही स्थान में ही रखेगी, ऐसा विश्वास एक बच्चे को अपनी माँ के ऊपर होता है। तो उसी प्रकार से भक्तों को विश्वास भगवान के ऊपर होता है कि जहाँ जिस स्थिति में भगवान रखेंगे, अपनी सेवा में आज भी लगाए हुए हैं और आगे भी अपनी सेवा में लगाए रखेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलतापूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। सरलतापूर्वक अर्थात भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और इस चिंता में छोड़ देते हैं कि मैं भगवान के धाम कब जाऊंगा, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं हैं और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। तो स्पष्ट है, भक्ति योग में भक्त प्रयास करते हैं, जैसे बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, तो ये तो उनका व्यवहार होता है। व्यवहार की दृष्टि से भक्त बंदर के बच्चे की तरह कार्य करते हैं, बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से वो एक बिल्ली के बच्चे की तरह होते हैं। बिल्ली का बच्चा उसकी माँ के द्वारा उसके मुंह से पकड़ा जाता है और वो प्रेम का अनुभव करता है। तो यानी भक्त लोग प्रयास के मामले में तो खूब प्रयास करते हैं, पूरी शक्ति से प्रयास करते हैं, लेकिन आश्रय के मामले में, अपने प्रयासों की सफलता के मामले में कृष्ण पर आश्रित रहते हैं कि कृष्ण ही उस जब कृपा करेंगे तो उनके प्रयास सफल होंगे। तो व्यवहार और दृष्टिकोण में अंतर है, थोड़ा सा अंतर तो नहीं है, अंतर अभी है भी और नहीं भी, मतलब किस तरह से कृष्ण से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। और बाकी लोग जो हैं वो अपने आत्म साक्षात्कार की सिद्धि के लिए स्वयं अपने पर ही कह सकते हैं निर्भर होते हैं, तो इसलिए उनको विचार करना पड़ता है कब शरीर त्यागना है कब नहीं त्यागना है। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, अर्थात सिद्ध नहीं होगा तो कभी भी शरीर त्याग देगा और ऐसी अवस्था में उसका सिद्धि प्राप्त करना निश्चित नहीं है। किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके उचित अवसरों का, उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है, मतलब कब उसने शरीर त्याग दिया उस पर निर्भर करता है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है, अर्थात कौन से काल को में कौन से देवता का अधिष्ठान है, अवस्थिति है, उसके अनुसार उस व्यक्ति की गति होती है। जैसे हम देख सकते हैं कि हम लोग कहते हैं इससे भी हमारा शनि का काल चल रहा है, इस समय हमारा राहु का काल चल रहा है, तो काल तो काल है, काल शनि और राहु नहीं होता। इसका अर्थ है कि काल के विशिष्ट समय में एक पर्टिकुलर देवता का अधिष्ठान होता है और उस समय व्यक्ति अगर शरीर त्यागेगा तो उसी प्रकार की अलग अलग गति प्राप्त करेगा। श्लोक क्रमांक 24। अग्नि ज्योतिर इहा शुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्नि देव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभक्षण में शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तर या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है इन छह मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। उत्तरायण का अर्थ होता है जब सूर्य उत्तरोत्तर होता है, जब दिन बड़े होते हैं जिसे कहा जाता है, और दक्षिणायन मतलब जब दिन छोटे होते हैं। तात्पर्य जब अग्नि प्रकाश दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि भगवान जो सोमवार रविवार है वो सभी के अधिष्ठात्रा देव होते हैं, ऐसे ही पक्षों के देवता होते हैं यानी 15 दिन के देवता होते हैं, मासों के देवता होते हैं और प्रकाश और अग्नि के देवता होते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य की को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है, यानी कि मन में जो इच्छाएं होती हैं उसी प्रकार से अगला जीवन प्राप्त होता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात जो योगी सिद्ध है वो जानता है कि कौन से समय में शरीर त्यागना है। जैसे भीष्म पितामह त्याग रहे थे और वो एक सही स्थान और समय चुन करके शरीर त्यागता है। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता, हमें से कोई व्यक्ति जानता नहीं कि हम कब मरेंगे और कैसे मरेंगे। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटना पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। क्यों? क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में हर परिस्थिति में भक्त जो है वो भगवान के आश्रय में रहता है और भगवान के आश्रय सर्वोपरि आश्रय है, उसमें देवता और इत्यादि वगैरह कुछ नहीं कर सकते। जिसको भगवान श्री कृष्ण का आश्रय है उस पर देवता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए भक्त लोग इस बारे में चिंता नहीं करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो यानी कि अब अलग पक्ष में अलग समय में जब रात्रि का पक्ष होता है उसमें जब जाते हैं तो फिर व्यक्ति को परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, वो चंद्रलोक को जाता है। भगवान के तृतीय स्कंध में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञकांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। वे इन महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं, अंततो गत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख न सकें। इस संबंध में छोटा सा कमेंट है कि लोग कह रहे थे या किसी ने पूछा कि भाई हम चंद्रमा पे गए हैं कि नहीं गए, तो दो बात। एक कि चंद्रमा पे जाने का तरीका भगवान बता रहे हैं और यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, और जो कोई बोल रहा है इसके अलावा कोई तरीका है तो वो हमको निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। दूसरा, भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि प्रभुपाद भी समझा रहे हैं कि जब चंद्रमा पे जाकर के व्यक्ति सुख भोगता है, तो अगर कोई कह रहा है कि चंद्रमा पे कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ है कि वो चंद्रमा पे गया ही नहीं है, वो केवल झूठ बहका रहा है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को एक मेले में भेजते हैं और आप जानते हैं कि मेले में बहुत लोग आए हुए रहते हैं, बहुत भोग होता है, बहुत आनंद होता है, और कोई व्यक्ति को आप भेजो भाई मेले में क्या देखा, तो उसने कुछ नहीं, हवा था, पानी था, कुछ भी नहीं था वहां पे, तो निश्चित रूप से आप कहोगे नहीं, इसका मतलब वह व्यक्ति वहां पे नहीं होके आया है। तो हमें शास्त्रों की बात पर विश्वास करना चाहिए, साइंटिस्ट की अपूर्ण इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उन्होंने बहुत गलतियां की हुई हैं पहले से ही। और इसके आधार पर स्वीकार करना चाहिए कि ये लोग कभी चंद्रमा पे नहीं गए, क्योंकि जाने का तरीका गलत था और जाने के बाद जो डिस्क्रिप्शन किया वो भी बिल्कुल गलत था। शुक्ल कृष्णे गति ही यते जगत शाश्वते मते एक क्या यात्य नावृत्तिम अनन्यावतते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु का अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद में से ऐसा भी विवरण उद्धृत किया है, जो अनादि काल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतन रहे हैं वे निरंतर आवागमन करते रहे, वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अनादि काल से सकाम कर्मी, बड़ा जबरदस्त बात है अगर आप विचार करें, कितने समय से लोग इस प्रकार के चक्र में फंसे हुए हैं। स्वर्ग जाना, स्वर्ग से नीचे गिरना, फिर पुण्य करना, फिर स्वर्ग जाना, फिर वापस गिरना, लेकिन इस चक्र को हम लोग भेद सकते हैं, निकल सकते हैं अगर हम भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि कृष्ण की शरण में जाना ये परम रहस्य है। पहली बात तो लोग इस चक्र से निकलना नहीं चाहते। पुराने युगों में लोग कम से कम चंद्रमा पर तो जाना चाहते थे, मतलब वेदों की इस बात पे तो विश्वास था, कर्मकांड पर भी विश्वास था। अब तो वो भी खत्म हो गया है। अब तो लोग कहते हैं कुछ नहीं, जो है बस इस जीवन में भोगो और कुछ भी नहीं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो वेदों पे अगर हम विश्वास करते हैं तो व्यक्ति समझेगा कि दूसरे ग्रहों पे भी जीवन है और वहां अधिक सुख प्राप्त हो कर सकता है व्यक्ति। लेकिन एक भक्त समझता है कि जगत में कहीं पे भी जाएगा सच्चा सुख भगवान श्री कृष्ण के आश्रय, श्री कृष्ण के शरण में ही है। तो इस चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का, ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे जाने का एकमात्र तरीका है कि हम कृष्ण की शरण में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। और ये परम रहस्य है जिसको प्राय लोग नहीं जानते और जानने के बाद भी पूर्ण श्रद्धा नहीं रख पाते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मोहयति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो भगवान कह रहे हैं कि इस मोह का अर्थ क्या है। मोह का अर्थ बहुत सिंपल है, जब अपने आप को शरीर मानेंगे तभी सोचेंगे कि किसी इस भौतिक जगत में किसी एक विशिष्ट परिस्थिति में मैं सुखी हो सकता हूँ। तो इस मोह से भक्त लोग निवृत्त रहते हैं और यही समझते हैं कि मैं कृष्ण के शरण के लिए बिना, कृष्ण की भक्ति के बिना, कृष्ण के धाम की प्राप्ति के बिना, कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति के बिना संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। तो इन सब चक्करों में पड़ने के बजाय वो सीधे योग करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए, अर्थात भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए कि कब और कहाँ मरेंगे। ओह, प्रभुपाद इसको बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक रहकर स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, ये हमारा काम है। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है, क्योंकि अंततोगत्वा हम भौतिक जगत में ही रहते हैं। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रह जाए। तल्लीन का अर्थ है कि चिंता से मुक्त, हाय होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे भाई भगवान के आश्रय में है, भगवान के शरण में है, जिसने आज तक रक्षा करी है वो आगे भी रक्षा करेंगे, इस बात पे विश्वास करना चाहिए, ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि चिंतन करना चाहिए कि मैं कृष्ण की सेवा अधिक अधिक कैसे कर सकूं, और केवल मैं ही नहीं कर सकूं, अन्य लोगों को कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा का महत्व, उसका रहस्य और उसका तरीका बता सकूं। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। क्या होगा तरीका सुनिश्चित करने का, और जगहों पे और मार्गों में चित्त लगाने की बजाय सीधे कृष्ण भक्ति करना है। कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत होए, ये विश्वास रखना चाहिए। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रहता है। तो योग का अर्थ ही है कि हर क्रिया भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान यथाहारम उपयुंजतः। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए, अर्थात भौतिक कार्यों से बिल्कुल अनासक्त हो जाना चाहिए। भौतिक कार्यों करने में रुचि नहीं रखनी चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत उत्साह होना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। युक्त वैराग्य का अर्थ है कि युक्त युक्त रहेगा, मतलब भगवान कृष्ण की सेवा में आ सकती है उसकी, और बाकी वस्तुओं में आ सकती नहीं। और वस्तुओं का उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए होता है, इसलिए वस्तुओं का भक्त ध्यान रखते हैं, बल्कि एक कर्मी से भी अधिक ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आसक्ति उनकी भगवान की सेवा में है, न कि उन वस्तुओं में। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयास सुनिश्चित है। ये बहुत अच्छी है लास्ट लाइन। जब हम भक्ति करते रहते हैं और प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो ये श्रद्धा सहज रूप से हमारे हृदय में धंसने लगती है कि भगवान का नाम से, भगवान की भक्ति करने से मैं निश्चित भगवान के धाम चला जाऊँगा। और इसी कारण से सारा प्रयास, सारी शक्ति भगवान की भक्ति करने में लगाता है, न कि अन्य कार्यों में या अन्य दिशाओं में अपनी एनर्जी को लगाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से भगवान का जो भक्त है, भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। आगे भगवान बताएंगे कैसे भक्ति करने से सारे लाभ प्राप्त होते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।